thought we could start with any, if there are any questions coming out of the discussion groups this morning.
So, आज सुबह के चर्चा में गुड चर्चा से जो कोई सवाल आए होंगे उससे हम शुरू करते हैं.
दो क्वेश्चन आए.
ओके, टू
पहला क्वेश्चन ये था कि कुछ ऑर्डर संगारम में, शिविर में, चैप्टर मीटिंग में रेगुलर रहता है, किंतु वो चैप्टर का जो भी कुछ जमा वर्ग है या कुछ और कोई एक्टिविटी है उसमें वो सारी का कुछ भागीदारी नहीं होता है, तो क्या करना था? और दूसरा था वो समय पर में नहीं आता और जल्दी चला जाता है.
काउंसिलिंग मीटिंग
कहाँ?
काउंसिलिंग मीटिंग.
सो काय करायचं अमृती विषय?
त्याला सांगा तुम्ही.
हा ओके. His first question is, some people go on retreats, go on Sangharam, but they don't participate in the center. So how we can encourage them to participate? And another question just connected with that is, some people attend meetings, but they don't never come on time. So they just attend half of it.
It's a bit hard for me to answer because I don't know all the conditions that exist at your center.
तो आपके सेंटर में जो सभी परिस्थितियां हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं होने से मैं इसका पूरा जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा.
But one thing you could do is ask people why they don't come.
लेकिन एक बात आप कर सकते हैं, आप लोगों से चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनको कि वो क्यों नहीं आ रहे.
Sometimes I think we do too much guesswork and we can just ask people and get into dialogue.
Kabhi kabhi hum bahut hi andaaze lagate rehte hain. Humne logon ko milke charcha karni chahiye, samvad prasthapit karna chahiye.
And make the effort to understand where people are coming from and what they're interested in.
Aur phir log bhi kaise matlab unka drishtikon kya hai aur unko kya mehsoos ho raha hai ye hum sun sakte hain.
And sometimes people have attitudes that are mistaken.
कभी कभी लोगों की गलत धारणाएं होती
हैं. So, for example, sometimes I think people are waiting to be invited.
तो कभी कभी लोग उदाहरण के लिए कोई बुलाएगा इसका इंतजार करते रहते
हैं. They might not realize that the events at the center are for them.
तो ये शायद उनको ध्यान में नहीं आता है कि केंद्र की जो ये गतिविधियां है ये उनके लिए है.
So sometimes I think we need to find out where people are coming from, what they understand.
तो इसलिए ये ढूंढना जरूरी है कि लोगों का दृष्टिकोण क्या है और उनको चीजों को समझने में मदद करनी चाहिए.
And try to create a meeting point between them and the activities at the center.
और इन ऐसे लोगों के बीच में और केंद्र की एक्टिविटी में कुछ ऐसे एक जगह आने का या उनमें समझ निर्माण करने के लिए परिस्थिति निर्माण करनी चाहिए.
Sometimes it's surprising what people think.
कभी कभी लोग कैसा सोचते हैं ये बड़े आश्चर्य, मतलब ये जानना भी बड़ा आश्चर्यकारक होता
है. One man I remember in Dublin, he'd been coming along for a long time and then he went on a weekend retreat.
तो एक ऑर्डर मेंबर था, काफी लंबे समय से वो आते ही रहते थे और एक बार वो वीकेंड शिविर में गए.
And then he came to our Tuesday night Sangha night.
और फिर हमारी जो संगा नाइट रहती है मंगलवार के दिन उसमें आते हैं.
And he was telling everybody, I'm a member of the Sangha now.
और फिर वो आकर जो है वो बोलते हैं कि मैं अभी संघ का सदस्य हूँ.
So in his mind, going on retreat meant he was now a member of the Sangha.
तो उसके मतलब संघ सदस्य नहीं थे वो, तो उनके मन में ये वो पकड़ के आया कि कोई शिविर कर लेना इसका मतलब संघ का सदस्य हो जाना है.
Which really helped me understand how important it was for people to go on retreat and what it meant to them.
तो मुझे ये ध्यान में आया कि लोगों को शिविर में जाना कितना महत्व का है और उनका उसको उनको कैसे करना चाहिए.
And I think in response to the second question, sometimes I think, well, I don't know the cultural situation here very well, but sometimes you just need to make it very clear what attending a class means.
तो मुझे अभी यहाँ की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बहुत सारी पता नहीं है, लेकिन कोई भी क्लास को अटेंड करना इसका मतलब क्या है इसकी भी स्पष्टता हमने कर लेनी चाहिए.
So if you let people come late, they'll keep coming late.
अगर हम लोगों को देरी से आने के लिए मौका दे रहे हैं तो लोग देरी से आएंगे.
So if the class starts at 7:30 p.m. and the door is locked at 7:31 p.m.
अगर क्लास तुम्हारा 7:30 को चालू होता है और 7:31 में दरवाजे बंद हो जाते हैं.
People will come late once, but they won't come late again.
लोग एक बार लेट आएंगे लेकिन उसके बाद में लेट नहीं आएंगे.
I mean,
next time they will not even come.
No, yeah, well, maybe not. But I think the point is that you have to focus on the people that are committed.
तो भले ही शायद वो अगली बार ना आए, लेकिन लोगों को ये संदेश जो है वो स्पष्ट रूप से जाना चाहिए.
And likely to become more committed.
और फिर ऐसी स्थिति में लोग ये संभावना होती है कि वो और ज्यादा प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, कमिटेड होते हैं.
अदरवाइज यू वॉटर डाउन द एटमॉस्फेयर.
नहीं तो हम पूरे वातावरण को जो है एक हल्का कर देते हैं.
एंड यू मेक लैक ऑफ कमिटमेंट द नॉर्म.
और किसी चीज के बारे में कमिटेड नहीं रहना, मतलब गंभीर नहीं रहना, इसका वातावरण पैदा हो जाता है.
तो काउंसिल के बारे
में, I have a question about council.
Oh yeah.
So हमारी जो काउंसिल हमारे केंद्रों में होती है, उसके जो सदस्य होना है वो सभी केंद्र में सम्मिलित सभी धर्मचारी से उसके सदस्य हो सकते हैं या केवल कुछ के लोग उसके विशिष्ट ऐसे लोग सदस्य रहना प्रिंसिपली करेक्ट है क्या बात?
So with this question about the council, like is everybody involved in the center should be part of this council or only few people should be part of council?
Whichever way you do it, it's important to be clear.
तो आप जो भी करते हैं ये महत्व की बात है कि आप स्पष्ट हो.
One of the things that I learned when I was the chair of the center is that not all order members have the skills to be part of the board of trustees.
तो एक बात मैंने मेरे सेंटर में बात सीखी है कि सभी धर्मचारी ट्रस्टी बनने की क्षमता नहीं रखते.
Some people think that they're entitled to be a member of the Board of Trustees because they've been ordained.
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी दीक्षा हुई है इसलिए उन्होंने वो विश्वस्त मंडल में आना चाहिए.
And that can be a point of tension.
और इसकी वजह से तनाव निर्माण होता है.
But I think if your order members are not part of the Board of Trustees, it's very important to find a way for them to be involved in the Sangha activities.
तो अगर आपके केंद्र के कोई संघ सदस्य जो आपके ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य नहीं है तो उनको सहभागी कैसे कर लेना चाहिए, इसलिए कोई रास्ते निकालने चाहिए.
Yeah.
This confusion about Board of Trustees and Council.
I think it's important to be clear about what the criteria are for membership of the Board of Trustees.
तो इस बात को मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि जो ट्रस्टी विश्वस्त मंडल है उसके सदस्य होने के लिए कोई क्राइटेरिया क्या है.
So that it's objective and it's not just about who's your friend and who's not your friend.
और ये सारे निकष जो है वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, केवल अपने कौन से मित्र है और कौन से अपने पास के दूर के है, इस तरह से उनका चयन नहीं होना चाहिए.
So for example, one of the criteria might be that the person is able to attend all the meetings or at least most of the meetings.
तो ट्रस्टी बनने का एक निकष यह होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने सभी मीटिंगें उपस्थित रहने की क्षमता रखनी चाहिए, कोई एक मीटिंग के लिए आ गए हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए.
One of the criteria might be that the order member is able to keep, to maintain and deepen harmony with other order members.
दूसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए ट्रस्टी होने का कि दूसरे लम्बचारियों के साथ सुसंवाद में रहने की उसकी क्षमता होनी चाहिए.
Another criteria might be that they're on good terms with their preceptors and Kalyana Mitras.
और एक निकष हो सकता है कि उनका अपने कल्याण मित्र और आचार्य उपाध्याय के साथ में अच्छा संपर्क होना चाहिए.
Then it can be a good idea from time to time in your trustee body to review what your criteria are so that everybody's clear about it.
और ट्रस्टी में ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य होने के लिए कौन से निकष है इसकी बार बार स्पष्टता होती रहनी चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में ये सब रहे.
Does that answer your question, Manju Kirti?
Manju Kirti, आपके सवाल का जवाब मिला?
Yes.
Yeah.
मेरा प्रश्न ऐसा था,
थोड़ा अमित जी कुछ स्पष्ट करो.
हां, मला असं वाटतं त्यांनी जो प्रश्न विचारला तो म्हणजे जसं ते तिकडे पाहतात कॉन्सिल म्हणजे ट्रस्ट बॉडी, आपल्याकडं ट्रस्ट बॉडी आणि कॉन्सिल वेगळे या मगाशी चर्चा केली. मला असं वाटतं त्यांचा प्रश्न हा आहे की आपल्या कॉन्सिल मध्ये केंद्रातल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी असलं पाहिजे का,
This is related to the confusion about the council and trust.
Okay.
What we call council here.
Yeah.
Is the collection of order members, yeah. They come randomly together,
yeah,
most
yeah,
involved
yeah.
in the center,
yeah,
to
yeah.
plan programs.
Uh-huh.
And the trust body is what you call council.
Yeah, yeah,
so
yeah.
His question was related to involvement of people in planning and activities.
Yeah. Yeah, okay.
That's the council.
Yeah, yeah. Yeah, I mean, in terms of a council and the way that you're describing it, it's good to have the people who are committed to the classes have their voices there, so that they feel involved.
तो हमारे यहाँ की जो मराठी चाल ना आप सर मराठी बोलते हैं हिंदी वाला कौनसा है
यार
मराठी ये तो मराठी
नवजन में
अच्छा ठीक है ठीक है तो
Sorry, please.
Oh, yeah, no, I was just saying, maybe I'll actually put it a bit better. Ideally, you want the people who are most committed to have the most say in how things are run.
तो आदर्श बात यह है कि केंद्र के लिए जो लोग सबसे ज्यादा committed है उन लोगों को केंद्र की गतिविधियों में ज्यादा उनके मत को महत्व होना चाहिए.
Some people want to have a say, but they don't want to do anything.
कुछ लोगों को अपना मत मजबूती से रखना अपने मन के जैसा होना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन उनको केंद्र की एक्टिविटी में सहभागी नहीं होना चाहते.
And that's not very helpful.
और ये परिस्थिति उचित नहीं है.
At the same time, if people are very involved and they don't have an opportunity to express what they think should happen, they get frustrated.
अगर लोग कार्यों में सहभागी है केंद्र के और उनको जो लगता है उसको सुना नहीं जा रहा है तो उनकी निराशा बढ़ती है.
So ideally you want a situation where order members can put their energy into the center in a way that's in harmony with what other people are doing.
तो इस तरह से केंद्र में जो लोग नित्य रूप से क्रियाशील है उनकी अन्य लोग जो क्रियाशील है उनके साथ में सुसंवाद में जो है इकट्ठा आना जरूरी है.
So often as the chairman you have two things, you have what the center needs on one hand and you have what order members want to do.
तो चेयरमैन करके आपके सामने दो बातें होती है, एक केंद्र को क्या जरूरत है और धम्मचारी क्या करना चाहते हैं.
And you're trying to find a way of bringing the two together so that what is objectively needed is done and also individual order members can find their way into engagement with the program.
और इसलिए आपको एक ऐसे तरीके ढूंढना जरूरी होता है कि केंद्र के लिए जो करना जरूरी है वो होना चाहिए और ब्रह्मचारियों को जो करना चाहते हैं उनको भी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि वो सहभागी.
It often takes a lot of dialogue.
और इसके लिए काफी सारी चर्चाओं की जरूरत होती है. Yes, sir,
मेरा प्रश्न था कि अपने इधर जो काउंसिल होती है जनरली उसमें आध्यात्मिकता के ऊपर चर्चा नहीं होती या धार्मिक वातावरण तैयार करना इस पर चर्चा नहीं होती है. चर्चा सिर्फ बिजनेस की होती है कि केंद्र में क्या कार्यक्रम लेना है, फंड कैसे जमा करना है, ये काम कैसा है वो. तो उसमें जो आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल अपना काउंसिल में होना चाहिए एटमॉस्फेयर वो निर्माण नहीं होता और इसी से तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं. और दूसरा इसी से रिलेटेड है कि अपने इधर बड़ी संख्या में धर्मचारी है, हर केंद्र में बहुत सारे हैं, मतलब मेरे केंद्र में तो 47 के करीब है. तो सभी लोग केंद्र के कार्य में सहभाग नहीं होते, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, धर्मचारी बन गए इट इज सर्विस. तो उनको कैसे केंद्र के काम में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनका या केंद्र को कैसे सहकार्य करें इसके बारे में कुछ आप
okay.
बता सकते.
यस सो मैं पहला सवाल भूल गया आपका
अपनी जो काउंसिल होती है बड़ी होती है
अब आ गया मैम. यस वी हैव काउंसिल वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड द वे वी कंडक्ट हियर. And in this, in council meetings, we do a lot of business, but we don't create a kind of spiritual atmosphere. We don't, create that atmosphere.
Yeah.
So what we should do in these circumstances?
Uh-huh. Well, maybe what I'm going to say now, I think will answer your question.
So, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें आपका जवाब होगा.
If it doesn't, you can ask me again.
अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप फिर से यह सवाल मुझे पूछ सकते हैं.
Because in a way that's the key concern is how do you create the right kind of atmosphere, not just in the classes, but in the meetings that happen about the classes.
तो सवाल यही है कि जो उचित वातावरण जो है वो केवल क्लास में नहीं बल्कि मीटिंगों में भी वो उस तरह से निर्माण होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए.
So maybe I'll start talking and
another question.
Another question, sorry, yeah.
So his second question is like he got 47 order members in his center. Many order members don't involve in the center themselves. Then it becomes really difficult because how then they got the question how we I can encourage more people to participate in the center.
I think in principle it's probably a matter of a two-way dialogue, like trying to find out why they don't participate and what they would like to do if they were to participate.
तो मुझे लगता है कि वो दो तरफा संवाद होना चाहिए कि एक तो वो क्यों सहभागी नहीं हो रहे हैं ये जानना और आप उनको क्यों सहभागी करना चाहते हैं ये उनके तरफ पहुंचना. तो ये दोनों तरफ से एक दूसरे को समझना जरूरी
है. Yeah, and trying to find ways of involving people with different temperaments and different skills.
और अलग अलग स्वभाव के अलग अलग कौशल्य के लोगों को किस तरह से केंद्र में सहभागी करके लेना चाहिए इसके लिए भी कार्य करना जरूरी होता है.
And at the same time maintaining a high standard in the center.
और उसी वक्त केंद्र में एक ऊंचा दर्जा भी हमें कायम रखना जरूरी होता है.
But what you're describing is a challenge that a lot of centers of your size have all over our movement.
तो जो समस्या आप बता रहे हैं हमारे पूरे आंदोलन में जब जहां बहुत बड़ी संख्या होती है धर्मचारियों की उन सब की यही समस्या है.
One thing you could do is encourage some order members to start a new group or a new center somewhere else.
और एक आप सब मतलब लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उसमें से कुछ जो धर्मचारी है इकट्ठा एक समूह बना के कोई नया सेंटर शुरू करें.
So I think one of the challenges is that when a center gets bigger, it's harder for people to take initiative.
तो एक सबसे बड़ी समस्या या आह्वान ये हो जाता है कि जब केंद्र बड़ा होने लगता है तो अपनी अगुवाई लेना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है.
So people can feel like everything's already happening and there's no space for them to do anything.
और फिर लोग ये ऐसा सोचना शुरू कर देते कि सब कुछ तो हो रहा है और अपना अपने लिए अब सहभाग होने के लिए कुछ जगह ही नहीं दिख रही है.
Yeah, so you could have challenged them to do something new somewhere else.
और इसलिए हम उनको एक आह्वान के सामने रख सकते हैं ताकि और कहीं और नई तरह से वो शुरुआत कर सकते.
You've got a lot of Buddhists in Nagpur.
Nagpur में बहुत सारे बौद्ध हैं.
Yeah, a lot more than in Dublin.
Dublin में जितने उससे तो बहुत ज़्यादा है.
I mean, I say all these things. I'm just talking off the top of my head. I haven't got it all worked out.
अभी जो सूझ रहा है उस तरह से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. पहले से मैंने कोई ऐसा सोच के रखा है ऐसा नहीं.
एक और
Okay, shall I ask another question?
Okay.
अपने जैसे भारत में हम देखते हैं कि बहुत से केंद्र खड़े तो हो गए हैं, लेकिन उनमें बहुत सी जो कमेटियां है या बहुत सा इंटरनल जो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो एज पर केंद्र के नाम के अनुसार मतलब संघ के नाम के अनुसार नहीं हुआ और वो केंद्रों में बहुत से डिस्प्यूट है, तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए उसका. मतलब कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगा मैं एक केंद्र बना रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता, और मैं एक केंद्र बनाने के लिए अगुवाई लेके एक केंद्र खड़ा कर लेता हूँ. उसमें बहुत सी खामियां रहती हैं, वो एज पर अपने संघ के गाइडलाइंस के अनुसार नहीं होती, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता उसकी कमी के लिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, इस कमी के साथ क्यों, सब उसकी वाहवाही करते हैं, हाँ बढ़िया है सेंटर कर लो, ये कर लो, कर लो. लेकिन बाद में वो आगे जाके वो सेंटर इतना प्रॉब्लम होता है कि पूरी चेयरमैन सभा को कई सेंटर के बारे में वही काम चल रहा है, इसको सुलझाओ उसको सुलझाओ. ये दिक्कत अगर आती है तो पहले हमने अगर उसको प्रिकॉशन लेके वो काम शुरू किया तो शायद ये परेशानी से हम बच सकते
हैं. फर्स्ट थिंग इज व्हेन सर्टेन सेंटर स्टार्ट्स, इट डजंट स्टार्ट ऑन द principles that are laid down for the beginning of any center. Mm. So someone goes to out and start the center.
Yeah.
And then slowly problems start to arise and it becomes really difficult to handle the situation.
Yeah.
The situation gets more and more worse.
Yeah.
So in chairman's meeting, every time such issues come and then most of the time goes into that.
Mm.
So So his suggestion is, you know, there should be a lot of care while we start center. We should have start on the strong basis of principles you know, outlined by the movement.
Yeah, yeah. I totally agree.
मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ.
So there's a document. I know Amrit Deep has done study on it. What is a Tri Ratna Center?
तो एक डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज द त्रिरत्न सेंटर. अमरदीप ने चेयरमैन मीटिंग में उस पर अभ्यास भी किया हुआ है.
एंड इट विल बी वेरी गुड इफ पीपल हु स्टार्ट न्यू एक्टिविटीज अंडरस्टैंड दैट वेरी डीपली.
और जो लोग नए एक्टिविटी को शुरू करते हैं वो अच्छा होगा कि वो लोग उसको अच्छी तरह से समझे.
एंड इन अ वे इट गोज बियॉन्ड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मूवमेंट स्ट्रैंड्स.
और एक तरह से इस तरह की नई शुरुआत करने की जो जिम्मेदारी जो है वो केवल मूवमेंट जो स्ट्रैंड है उतने तक ही सीमित नहीं रहती.
सो एन ओल्ड मेंबर हु इज गोना स्टार्ट समथिंग न्यू हैज टू बी इन क्लोज कम्युनिकेशन विद देयर कल्याण मित्रस एंड देयर प्रीसेप्टर्स.
जो धर्मचारी या इस तरह से कोई केंद्र शुरू कर रहा है तो वो अपने कल्याण मित्रों के और अपने उपाध्याय आचार्यों के अच्छी तरह से संपर्क में होना चाहिए.
एंड ऑल्सो इन क्लोज कम्युनिकेशन विद अदर पीपल वर्किंग इन द मूवमेंट इन दैट एरिया.
उस क्षेत्र में आंदोलन में काम करने वाले अन्य लोग जो है उनके भी अच्छे कम्युनिकेशन में वो होना चाहिए.
And if they're not going to do that, in a way they probably shouldn't be starting something new.
अगर इस तरह की उनकी परिस्थिति नहीं है तो उन्होंने कोई नया केंद्र शुरू नहीं करना चाहिए.
Yeah. It's what you've highlighted is a tension in our community.
तो आपने जो जिस पर बात की है वो हमारे संघ में एक तरह से इस बात को लेकर एक तनाव.
Yeah. I wish there was an easy answer.
निश्चित है इसमें कोई आसान जवाब नहीं है.
A key consideration, if someone's going to start something new, a key consideration should be, can that person work with other order members?
तो अगर कोई भी नया केंद्र शुरू कर रहा है तो एक सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण जो उसके बारे में विचार ये होना चाहिए कि ये धर्मचारी बाकी लोगों को साथ में लेकर काम करने की क्षमता रखता है क्या.
And if they can't work with other order members, they probably shouldn't start something new because it will just cause problems.
और दूसरे लोगों के साथ काम करने की अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है तो अपने नया सेंटर नहीं शुरू करना चाहिए.
The worst reason to start something new is if you're not able to work with other order members, so you think, well, I'm going to go and do my own thing somewhere else.
तो सबसे बुरी बात यही होती है कि अब इन लोगों के साथ, इन दमचारियों के साथ मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना चूल्हा जो है नया नया बना देता हूँ. तो ये सबसे बुरी बात है. इस कारण से केंद्र शुरू होता है तो वो बुरी बात.
And then you can be the big man in your own little pond.
और फिर उस नए परिस्थिति में फिर आप बड़े इंसान बनेंगे, बड़े बॉस बनेंगे और फिर बाकी छोटी मछलियां फिर आपके तरफ आएगी.
But it won't last.
लेकिन ये ऐसा नहीं चल सकता.
I've seen it. You've seen it too, I'm sure. Amrit Deep is nodding.
तो आप लोगों ने भी ये परिस्थिति देखी होंगी. अमृत भी अभी सिर हिला रहे तो आपने भी ये परिस्थितियों को जाना होगा पहले.
So that's, on the one hand, it's very good to encourage people to start new things. On the other hand, they need to be the right people and they need to have the right support.
तो एक तरह से एक बाजू में ये बहुत अच्छा है कि लोगों को नया सेंटर चलाने के लिए, निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, और दूसरी बाजू उसके ये भी है कि वो उचित लोग होने चाहिए जो नया सेंटर शुरू कर रहे हैं.
I want to say one more thing in response to your previous question.
आपके पहले के सवाल को लेकर एक और कुछ चीज बोलना चाहता हूँ.
I think it's important to keep having conversations with the order members about what kind of center you want.
तो ये बहुत महत्व का है कि अपने केंद्र के धर्मचारियों के साथ बार बार इसकी चर्चा करते रहना चाहिए कि उनको अपना केंद्र कैसा, वो अपना केंद्र कैसा देखना चाहते हैं.
So that people understand that it's not that if anything goes. It's not that you can do anything you like.
तो इस तरह से लोगों ने नहीं सोचना चाहिए कि हमको जो लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं.
Because sometimes it's difficult because as the chair, you're the person who has to say, no, we're not having that at our Buddha center.
तो ये बात तब मुश्किल हो जाती है जब केंद्र के चेयरमैन करके आपको ये बोलना पड़ता है कि नहीं, हमारे केंद्र में ये चीज हम नहीं कर सकते.
But it's a much stronger position if you say, we've had a conversation on our trustee body and we all agree that this Buddha center is about, you know, Dr. Ambedkar, it's about Sangharakshita. Those are the teachings that we practice. What you're talking about, it doesn't fit.
तो सबसे अच्छी परिस्थिति ये होगी कि आप अपने ट्रस्टी मीटिंग में इकट्ठा बैठे और फिर चर्चा करें उसकी, और ये सब मिलकर ये तय करें कि ये भंते के विचारों पर चलने वाला है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला है, हम बाकी चीज़ों को उसमें सहभागी नहीं कर सकते. ये साथ में मिलकर तय करें और उसको बार बार स्पष्ट करें.
So it's not personal. It's a matter of principle.
तो ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता है बल्कि ये तत्वों का मामला है.
And it's not what you think, it's what the whole trustee body thinks.
और फिर केवल आप सोच रहे हैं इसलिए नहीं बल्कि आपकी पूरी जो ट्रस्टी बॉडी है वो एक साथ इस तरह से सोच रही है.
So declare you can be about what we are, the easier it is to have those kinds of conversations.
तो जितने हम सामूहिक रूप से ज्यादा स्पष्ट होंगे उतने इस तरह के संवाद जो है वो आसान होंगे.
Okay. Any more questions?
और कोई सवाल?
मी मराठी सांगते. एखाद्या सेंटरवर चेअरमन अधिकारी शैली बोलत असेल तर अशा वेळी काय करावे?
इफ ऍट एनी सेंटर चेअरमन यु नो स्पीक्स इन मोर अथॉरिटेटिव वे, सो व्हॉट वन शुड डू?
Do you mean is the chairman is he or she being what's the kind of bossy and authoritarian?
तो आपको ऐसा बोलना है क्या कि वो जो भी चेयरमैन है
वो बहुत ज़्यादा मतलब अधिकार जताने वाले और बॉसी हैं
authoritarian.
और हाँ मतलब इस तरह से अधिकार जताने की कोशिश करने वाले हैं, ऐसा कहना है क्या?
आणि मग ते कोणत्याही लँग्वेजचा वापर करत असेल किंवा कुठलंही माझं ऐकासाठी मी चेअरमन आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी दुसऱ्या म्हणजे वरून मला सांगितलं म्हणून मी असं बोलतो, पण ते चुकीचं असेल तरी आपण ऐकलंच पाहिजे की अशा वेळेस काय करावे.
सो इफ चेअरमन स्पीक्स हार्श लँग्वेज और ही सेज नो यू मस्ट लिसन टू मी दिस इज I am because I am chairman and because people from above are telling me that's why I am doing this, so you must listen to me.
Yeah.
So even though we know that that person is wrong,
yeah,
so should we simply listen because he is chairman?
A person should be able to communicate their reasons for having a particular position.
So agar kisi ko bhi kuch apna mat rakhna hai तो ये मत इस मत तक मैं क्यों पहुंचा हूं इसको उस व्यक्ति ने स्पष्ट करना चाहिए.
If you I've been reading some of the speeches of Dr. Ambedkar.
अगर आप बाबा साहब के कोई भाषण पढ़ते हैं
and he lays out why he thinks what he thinks step by step point by point.
तो बाबा साहब भी वो ऐसा क्यों सोचते हैं इस निष्कर्ष तक वो क्यों आए हैं वो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से स्पष्ट करते हैं.
And then he says that's what I think. You need to decide what you think.
और फिर अंत में वो कहते हैं कि ये मैं सोचता हूँ, आपको तय करना है, आप क्या सोचते हैं?
So we should follow his example by saying the reasons why we have a particular position.
तो इसलिए उनका उदाहरण हमने लेना चाहिए कि हम अगर कुछ सोचते हैं तो हमारे कारण क्या है इस तरह के सोचने का, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए और उसको हमने व्यक्त करना चाहिए.
And then invite other people to engage with that.
और फिर अन्य लोगों को उसके साथ संवाद के लिए जो है उसके उनको शामिल करा लेना चाहिए.
So if somebody is being authoritarian, you could ask them to please explain why they've got their particular point of view or their particular position.
तो अगर कोई इस तरह से अधिकारशाही से बात करता है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि भाई आप थोड़ा स्पष्ट करिए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं और आप ऐसा क्यों चाहते हैं.
But to say it's true because I said it is not an acceptable position.
केवल मैं विशिष्ट अधिकार में हूं, पद पर हूं, इसलिए मैं सही हूं, ऐसा अगर कोई कहता है तो वो स्वीकार करने लायक नहीं होता.
The Buddha didn't do that, Bante didn't do that, Baba Saheb didn't do that.
बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, बंते ने ऐसा नहीं किया, बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया.
Buddhism is based on principles, it's not based on personality.
बुद्ध धर्म तत्वों पर आधारित है, व्यक्ति पर आधारित नहीं है.
Yeah. Does that make sense?
तो क्या ठीक है?
जैसे अभी इन्होंने बताया तो उस माध्यम से समझ में आया कि बासगिरी क्या होती है, जैसे उन्होंने जो कुछ उदाहरण दिए उसके हिसाब से. लेकिन और भी कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि जिससे स्पष्ट हो सके कि चेयरमैन और क्या क्या बासगिरी कर सकते हैं, जैसे कि उस हिसाब से जो बताया उससे थोड़ा स्पष्ट हुआ कि वो अधिकार वाले से बोलते हैं या पत्थर बोलते हैं या मैं चेयरमैन हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो सही है. और कुछ उदाहरण दे सकते हैं
उनसे उदाहरण सुनना चाहते हैं. सो इन दिस आंसर शी गॉट मोर क्लैरिटी ऑन हाउ द अथॉरिटी बिहेवियर कुड बी लाइक इंसिस्टिंग ओपिनियन दिस एंड दैट. बट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड.
वेल वन थिंग आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ इज गैंगिंग अप ऑन पीपल.
तो पहली बात हमने ध्यान रखना चाहिए या उसके बारे में सतर्क होना चाहिए किसी के खिलाफ गुट खड़ा कर देना.
So let's say a certain decision is going to be made at a meeting.
तो कल्पना करिए कि मीटिंग में कोई तो भी विषय पर एक निर्णय लेना जरूरी है.
And the chairman before the meeting goes around and makes sure that he or she has got support of a number of order members.
फिर चेयरमैन क्या करता है कि कुछ लोगों को मिलता है और ये इस बात के लिए निश्चित कर लेता है कि मीटिंग में उसके पीछे खड़े रहने वाले कुछ लोग हैं या नहीं.
So when the meeting actually happens, if there's any order members who disagree with the chairman, they're made to know that they're in a minority.
तो मीटिंग में जब कोई भी चेयरमैन के फिर खिलाफ जाता है उसके मत के, तो फिर उसको ये दिखा देते हैं कि वो अल्पमत में है, बाकी चेयरमैन के ही तरफ से बाकी लोग हैं वो अल्पमत में है, वो दिखाने का वो प्रयास कर रहा
है. That's a habit from our democratic processes which are important in wider society, but they're not appropriate in a spiritual community.
तो जो हमारी लोकशाही पद्धति में इस तरह से किया जाता है, लेकिन एक आध्यात्मिक संघ में या समाज में जो है इस तरह से हम कार्य नहीं कर सकते.
Because you're using power.
क्योंकि यहाँ पर आप सत्ता का उपयोग कर रहे हैं.
It might be subtle, but it's still power.
ये थोड़ा सूक्ष्मता से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है.
Maybe what I'll do is I'll start to talk about what I'm going to talk about because that answers your question.
क्योंकि अभी मैं जो बोलने का मैंने तय किया है उसकी बात मैं करूंगा, इससे आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे.
Yeah.